सातवां चैप्टर इतिहास की यूनानी परंपरा ग्रीक ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री यूनान और रोम दर्शन। यूरोपीय संस्कृति का उद्गम हिनलास है जैसा कि फिशर ने लिखा है, हम यूरोपीय हिलास की संतान हैं। हिलास नामक संस्कृति यूनान की क्रोड़ में विकसित हुई। इसका मुख्य लक्षण अस्थायित्व का अन्वेषण था। इसका प्रमुख उद्देश्य अस्थायित्व में मूर्तता की प्रतिष्ठा करना था। अतः यूनानी चिंतन पद्धति अस्थाई मूर्त और साकार तत्वों के आश्रय पर अग्रसर हुई। यूनानियों के मतानुसार मानव मस्तिष्क उसी तत्व को ग्रहण कर सकता है जिसका निश्चित स्वरूप और आकार हो। गतिमान और परिवर्तनशील तत्वों में ऐसा अस्थायित्व नहीं होता जिसे मस्तिष्क चिंतन परंपरा में परिबद्ध कर सके। यह लक्ष्य करने की बात है कि यूनानियों ने ज्योतिष विद्या का चलन कभी यूनानियों में ज्योतिष विद्या का चलन कभी नहीं हो पाया। अफलात और अरस्तु नक्षत्र निरीक्षण से अपरिचित थे। इस विषय का कोई मंत्र या तंत्र प्राचीन यूनान में आविष्कृत नहीं हुआ। पेरिक्लीज के शासन काल के अंतिम वर्षों में एथेंस के नागरिकों ने यह कानून बनाया कि जो कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का अध्यापन करे उस पर मुकदमा चलाया जाए और उसे समुचित दंड दिया जाए। काल की गति से अपरिचित होने के कारण वे कोई काल सूचक यंत्र भी नहीं बना सके। पेरिक्लीज के समय तक छाया के विस्तार से ही दिन का परिमाण निर्धारित किया जाता था। अरस्तु के समय में सर्वप्रथम घंटों का विभाजन प्रचलित हुआ। अफलात के समय तक किसी सूर्य घटी या जल घटी का रिवाज नहीं था। अफलात ने एक क्लेपसिड्रा का नक्शा बनाकर एक घड़ी का काम देने वाला यंत्र बनाया, किंतु यह उनके दैनिक उपयोगिता और व्यवहार का सामान्य उपकरण रहा। इससे यूनानियों के सामान्य जीवन में कोई अंतर उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि इसका सार्वजनिक प्रचलन नहीं हो सका। यह दृष्टिकोण यूनानी और रोमन जातियों के दैनिक जीवन के प्रत्यक्ष पक्ष में प्रतिबिंबित होता है। उदाहरण के लिए रोमन कानून के अनुसार भूमि का विक्रय और आधान तभी संपन्न हो सकता जब उसमें विक्रेता के नाम का पत्थर गाड़ दिया जाए। केवल कागजी कार्यवाही से उन्हें संतोष नहीं होता था। अतः यह स्पष्ट है कि यूनानी संस्कृति और चिंतन शैली ठोस तथा साकार और अस्थायी वस्तुओं पर केंद्रित थी। यूनानी लोग वस्तुवाद अस्वेस्टेंशियलिज्म के अनुयायी और उपासक थे। यह धारणा उनके इतिहास लेखन में स्पष्टतः प्रतिबिंबित है। यद्यपि ग्रीक संस्कृति को यूरोपीय इतिहास लेखन परंपरा का जनक माना जाता है, परंतु इतिहास लेखन की परंपरा हमें मिस्र और पूर्वी मध्य सागर के निकट रहने वाले लोगों से भी प्राप्त होती है। विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में यूनान की उपलब्धियां और अवदान प्रमुख स्वीकारा जाता है। इतिहास विधा हिस्टोरियोग्राफी के क्षेत्र में भी यूनानियों का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसका संक्षिप्त सर्वेक्षण अनुवर्ती पंक्तियों में संक्षिप्तता प्रस्तुत है। पहला, यूनानी इतिहास चेतना का उद्भव। यूनानी इतिहास चेतना के सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि यूनानी चेतना हेल्लास से विकसित हुई। इसका मुख्य लक्षण मूर्तता, साकारता और अस्थायित्व का अन्वेषण था। इसीलिए फिशर ने लिखा है कि हम यूरोपीय हेल्लास की संतान हैं। यूनानी चिंतन पद्धति अस्थायी मूर्ति और साकार तत्वों के आधार पर अग्रसर हुई। यूनानियों के अनुसार मानव मस्तिष्क उसी तत्व को ग्रहण कर सकता है जिसका निश्चित स्वरूप और आकार हो। इसीलिए यूनानियों ने मूर्त, साकार और अस्थाई चिंतन को आधार बनाकर इतिहास को प्रथमतः उद्भूत किया जिसका संक्षिप्त विकास द्रष्टव्य है। क वीर गाथात्मक इतिवृत्त, यूनान का प्रथम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखन वीर गाथात्मक रूप में उत्पन्न हुआ। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने बाहुबल से विजय प्राप्त किया। उनके इन विजयों के आधार पर भाट और चारण गीतों की स्थापना करते थे जिन्हें राजकीय भोजों और उत्सवों में गाकर सुनाते थे। ये गीत यूनान के प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्य के रूप में प्रचलित रहे। कालांतर में संभवतः विशेष रूप से लोक प्रसिद्ध गीतों को 8वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग होमर नामक कवि ने इन्हें एक सूत्र में आबाद करके व्यवस्थित रूप प्रदान किया। ख होमर का काव्यात्मक इतिहास, होमर की दो कृतियां इलियड और ओडिसी महाकाव्य को यूनानी इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो भारतीय इतिहास में वेद व्यास और उनके द्वारा संपादित ग्रंथों को है। होमर ने इन महाकाव्यों की रचना की थी अथवा नहीं, यह प्रश्न विगत शताधिक वर्षों से यूरोपीय विद्वानों को आकुल करता रहा है, परंतु अध्यावधि अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। परंतु ऐतिहासिक तथ्य यह है कि इन दोनों महाकाव्यों में यूनान के प्राचीन वीर महापुरुषों की उपलब्धियों एवं कृतियों का उल्लेख है। इलियड में ट्राजन युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध 10 वर्ष तक चलता रहा और हेक्टर को दफनाने के पश्चात कथा समाप्त हो जाती है। इलियड में एकियन राजाओं के शासनकाल में हुई घटनाओं का वर्णन है जिसमें उस युग की सभ्यता की धुंधली सी झाकी उपलब्ध होती है। दूसरा महाकाव्य ओडिसी के नाम पर लिखा गया क्योंकि ट्राजन युद्ध के पश्चात ओडिसियस के 10 वर्ष की उपलब्धियों तथा उसके भ्रमण का उल्लेख है। इन महाकाव्यों से श्रोताओं को मात्र आनंद ही नहीं प्राप्त होता था वरन इतिहास के प्रति उनकी जिज्ञासा भी इसे संतुष्ट हो जाती थी क्योंकि प्राचीन काल की गौरव गाथा सुनकर वे सम्मान का अनुभव करते थे। युद्ध इतिहास के प्रारंभ होने से पूर्व यूनानियों के पास यही साहित्य था जो उनके लिए इतिहास के समान ही था जिसे वे निसंदेह रूप से स्वीकार करते थे। इसका यूनानियों के लिए वही महत्व था जो प्राचीन भारतीयों के लिए महाभारत और पुराण का तथा यहूदियों के लिए बाइबिल का। प्रोफेसर मार्टवेल ने लिखा है कि द होमोरिक पोएम्स वेयर टू द ग्रीक्स सो फॉर एज हिस्ट्री गोज ऑलमोस्ट व्हाट द ओल्ड टेस्टामेंट वाज टू द जीवस दियर अथॉरिटी वाज फास्टेनेड अपॉन द ग्रीक माइंड डाउन टू द एरा ऑफ इट्स फुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जब यूनानियों के सम्मुख कोई नैतिक समस्या आती थी तो होमर का वचन निर्णायक माना जाता था। कूटनीतिक वार्ताओं में विरोधी पक्ष अपने अपने दावों को सिद्ध करने के लिए उसके महाकाव्य को उद्धृत करते थे। एस्काइलस जैसे महान यूनानी लेखक तक अपनी कृतियों को होमर के भोज का एक ग्रास कहकर उस महाकवि का अभिनंदन करते थे। इतिहास के विद्यार्थी के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि ट्राजन का युद्ध हुआ था अथवा वह केवल कल्पित कथा थी, अपितु इतिहास की दृष्टि से इन महाकाव्यों का यह महत्व है कि इनमें प्राचीन यूनान की सभ्यता की झलक दृष्टिगोचर होती है। इन महाकाव्यों से तत्कालीन यूनान के सामाजिक धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन का परिचय प्राप्त होता है। वीर गाथा कालीन इन दोनों महाकाव्यों का यूनान के राष्ट्रीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कालांतर के कई वंशों एवं जातियों ने नवीन कहानियों को जन्म दिया और अपने किसी पूर्वज का संबंध ट्राजन के युद्ध से जोड़ दिया। जेबी ब्यूरी का कथन है कि मात्र ऐतिहासिक संबंध ही इन महाकाव्यों से नहीं जुटता वरन दोनों महाकाव्य इतिहास की जिज्ञासा भी जागृत करते हैं। दूसरा, युग चक्रवादी इतिहास का प्रवर्तन। होमर के पश्चात उसकी विसंगतियों को दूर तक तैथिक क्रम में वीरगाथाकालीन वीर पुरुषों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। कालांतर में कवियों ने वंश के विषय में भी ध्यान दिया और यूनानी वीर पुरुषों के वंश को यूनानी देवताओं के साथ क्रमिक रूप से संबद्ध करने का प्रयास किया। हेसियड नामक कवि ने सर्वप्रथम इतिहास की अवधारणा में युग चक्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसने चार युगों की कल्पना की और इनका नामकरण चार धातुओं के नाम पर रखा। पहला स्वर्ण युग, क स्वर्ण युग। इस युग में क्रोनोस का स्वर्ग में शासन था। मनुष्य स्वयं देवताओं के साथ कार्य करता था, देवता उसके कार्यों में सहयोग करते थे, वह भी उनके साथ ही कामकाज करता था और पृथ्वी स्वतः उन्हें सभी श्रेयस्कर वस्तुएं देती थी। ख रजत युग। युग चक्र का यह द्वितीय चरण अपने पूर्ववर्ती अर्थात स्वर्ण युग की अपेक्षा हीनतावस्था में पहुंच गया था। इस युग में मनुष्य की श्रेष्ठता में कमी आई, मनुष्य धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होता जा रहा है। पारस्परिक संघर्ष में व्यस्त रहने के कारण देवताओं की आराधना के प्रति उदासीन होने लगा। उसकी प्रवृत्तियां कुछ हीन हुई तो देवताओं का उसे पहले जैसा सानिध्य और सहयोग मिलना रुक गया। ग कांस्य युग। इस युग में मानवीय गुणों का उत्तरोत्तर हास्य होता गया। शक्तिशाली मनुष्य दया भाव से सर्वथा शून्य हो गया। इस युग का भवन तथा सस्यमास्यम कांस्य निर्मित होते थे। अब मनुष्य पतो उन्मुख होने लगा था। मनुष्य के गुणों में और कमी आना इस युग की विशेषता थी। पारस्परिक मारकाट कलह तथा संघर्ष युग इस युग में प्रमुखता से विद्यमान था। घ लौह युग। इस युग चक्र का अंतिम चरण था। इस युग के वीर पुरुष अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक वीर तथा न्यायप्रिय थे। इस युग में ट्राय तथा थेबिज के युद्धों में वीर पुरुषों ने भाग लिया। वर्तमान कालीन लौह युग में श्रम तथा दुख से मानव समाज युक्त नहीं है, अर्थात इस युग का मनुष्य काम अधिक करने को विवश होता है तथा दुखों का भी उसे अधिक सामना करना होता है। युगों के चक्रात्मक विकास का यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जैसे रात दिन चंद्रमा की वृद्धि और छह मास पक्ष अथवा एक ऋतु के पश्चात दूसरे का अनुगमन होता रहता है, इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में भी परिवर्तन की चक्रात्मक प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु यह एक आधुनिक विवेकशीलता की परिचायक कल्पना मात्र है, क्योंकि किसी भी लंबे युग चक्र को रात दिन पक्ष या ऋतु चक्र में समाहित नहीं किया जा सकता। इसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होनी चाहिए और मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती हुई स्मृतियां ही उसका आधार हो सकती है। यूनानी भूमि पर नई संस्कृतियों को विकसित करने वाले लोग उन स्मृतियों के साथ ही वहां आए थे, लेकिन जिस संस्कृति में युग चक्र की मान्यता प्रचलित थी उस संस्कृति से उन लोगों का संबंध कब रहा था इसका कोई काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। युग चक्र सिद्धांत अपने मौलिक रूप में भारतीय सिद्धांत है जो अनंत काल से भारत में मान्य ही नहीं रहा है, बल्कि भारत में युगों की अवधि भी निर्धारित है तथा उसकी पूरी व्याख्या भी है जो युग चक्र को मनवनंतर काल का एक भाग मानती है। तीसरा, इतिहास में चिंतन की प्रधानता। छठी सदी ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक युगांतकारी काल माना जाता है। यूनान में भी इस काल में यह परिवर्तन हुआ कि यूनानी मानस कल्पना प्रधान प्रवृत्ति को त्याग कर चिंतन प्रधान होने लगा। इसका कारण था कि यूनान के कुछ भाग पर फारसियों का अधिकार हो गया और उन्हें एक दूसरी सभ्यता का भी परिचय प्राप्त हुआ और उनके अध्ययन मनन और चिंतन में परिवर्तन हुआ। प्राच्य देशों के इतिहास व भूगोल उनके अध्ययन के नए विषय बने, जिससे यूनानी इतिहास में चिंतन की प्रधानता ने जन्म लिया। इससे अनुलिखित ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। क लोगोग्राफी का उदय। यूनानियों का ईरान के साथ संपर्क होने से जो नया परिवर्तन हुआ उसके कारण यूनानी पुरोहितों, न्यायाधीशों तथा उच्चाधिकारियों की तालिकाओं, राजाओं की वंशावलियों, संधि विग्रह के लेखों आदि के संरक्षण की ओर ध्यान गया। आयोनिया के लेखकों ने सरल गद्य में नगरों, निगमों, जातियों, राजवंशों और मंदिरों की परंपराओं तथा किंवदंतियों को लिपिबद्ध करने लगे। सामूहिक रूप से इन्हें लोगोग्राफी कहते हैं। इन लेखकों में अकुसिलॉस, कादमस, हिलेनिकस, डायोनिसस, चारोन और हिकेटियस प्रमुख थे। हेरोडोटस के पूर्व इन्हीं के गद्य लेख इतिहास का काम देते थे। प्रोफेसर साटवेल ने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि द इमरजेंसी ऑफ लोगोफोल और प्रोज राइटिंग इन आयोनिया ग्रेटली फैकेलेटेड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। इट वॉज देयर डैट क्रिटिकल थॉट डॉमिनेटेड फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। ख हिकेटियस मिलेटस का हिकेटियस यूनानियों में प्रथम व्यक्ति था जिसने इतिहास लेखन में आधुनिक इतिहास लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। इसका जन्म 6वीं सदी ईसा पूर्व यूनान के अधिकारी परिवार में हुआ था। इसने मिस्र की यात्रा की थी और बृहद ग्रंथों की रचना की जिसमें ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड तथा बुक ऑफ लोकल जीनियोलॉजीज प्रमुख है। प्रथम ग्रंथ में उसने पर्शियन संसार का विवरण दिया है और दूसरे में यूनान के इतिहास से संबंधित नियमों का आलोचनात्मक विवरण दिया है। यह इतिहास गद्य में लिखा गया और प्रथम बार उसने इतिहास लेखन के दो प्रमुख सिद्धांतों को आधार बनाया, यथार्थता तथा परंपरागत मिथकों का आलोचनात्मक विवेचन। उपरोक्त वर्णित दोनों ग्रंथ यूनानी इतिहास लेखन कला की उस भूमिका से अलग करके पहचानी जा सकती है जो उससे पूर्व तक ऐतिहासिक ज्ञान को अपने भीतर संरक्षित किए हुए थी, परंतु परंपराओं के आधार पर इतिहास लेखन का जो रूप था वह इतिहास के आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तथ्यों तक पहुंचने की नव इतिहास कला पर भारी था, अर्थात जन अभिरुचि को अग्राह्य था। वास्तविक स्पष्टता की दृष्टि से देखा जाए तो साटवेल के अनुसार होमर कालीन कविताओं से पता चलता है कि यूनानी लोग ईसाइयों के ओल्ड टेस्टामेंट के युग के इतिहास से परिचित थे और उन्होंने अपनी बौद्धिक प्रतिभा के बल पर उस काल के इतिहास का सजीव चित्रण किया था। हिकेटियस ने कहा कि आई राइट व्हाट आई डीम ट्रू फॉर द स्टोरीज ऑफ ग्रीक्स आर ह्यूमरस एंड इन माई ओपिनियन रिडिकुलियस, अर्थात जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यह वह वृतांत है जिसे मैं सच्चा समझता हूँ। यूनानियों की तो अनगिनत कथाएं हैं जो मेरे दृष्टिकोण से झूठी और असंगत है। हिकेटियस की यह दृष्टि इतिहास में चिंतन और सूक्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति को प्रमाणित करती है। इसने इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी। हिकेटियस ने पद्य की अपेक्षा गद्य में इतिहास लेखन का जो कार्य प्रारंभ किया उससे ऐतिहासिक वृत्तांत के लेखन में आलोचना पद्धति का विकास हुआ। इस प्रकार वीरगाथा काल की कथाओं का वंशक्रम, तिथिक्रम एवं चिंतन प्रधान आलोचनात्मक दृष्टि से बुद्धिसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास हिकेटियस द्वारा किया गया।